गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा, तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाड़ा पर का मासा। तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाड़ा पर का मासा, मेरी दोने नमत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आसा। मेरे दोने नामत छेड़ी और मोहे राम मिलन की आसा। जिन करी तपस्या गोर थी वो होए आसरे हरक, वो होए आसरे हरक, वो होए आसरे हरक। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके।
अब इन कथाओं से आपको बहुत कुछ राहत मिलेगी और निष्कर्ष मिलेगा। ये शेख फरीद जी बचपन से ही ज्यादा कुछ शरारती टाइप थे। इनकी माताजी ने माताजी के नाक में दम रखा करता, उछल कूद करता, कोई बर्तन फोड़ देता, कोई उठा के पटक देता, गली में जाता किसी बाल गिर झगड़ा करके आ जाता, उलाने आते। उसकी मां ने सोचा कि इसको कैसे क्या करूं, मैं काम लग जाती हूं, यो किधर गली में भाग जाता है, शरारत करके आता है और आसपास के मोहल्ले का नाक में दम कर रहा है। एक दिन उसकी मम्मी ने माता जी ने कहा कि बेटा तू नमाज कराया कर। वो कहने लगा मां क्यों, मैं क्यों करूं नमाज, मुझे क्या मिलेगा। मां ने कहा कि बेटा तुझे अल्लाह खजूर देगा। अब उसको खजूर का फ्रूट जो था वो ज्यादा फेवरेट फ्रूट था उसका, बहुत चाव से खाता था। कहने लगा सचमुच मां। अखा बेटा सच्ची बता दे। अखा सच बताती हूं, तेरे को अल्लाह खजूर दिया करेगा जब तू नमाज करके उठेगा। अक मुझे बता फिर कैसे करना है नमाज। माता ने चादर बिछा दी साफ सी और कहा इस पर लौट जा और ऐसे मत्था टेक ले और न्यू कहता रहिए हे अल्लाह मुझे खजूर दे, हे अल्लाह मुझे खजूर दे, और जब तक मैं ना कहूं इतना आंखें मत खोलिए। अक ठीक है माता जी। अब वो क्या करती, एक चादर बिछा देती, उसकी आंखें बंद करवा दे। वो कह जाता लाख दूर दे, लाख दूर दे, लाख दूर दे। वो अपना सारे काम तो निपट ली कर लेती, सारे घर के काम ने। और क्या करती, पीपल के वृक्ष के पत्तों के बीच में और इतना सारे खजूर रखाती उसके नीचे कपड़े के नीचे जिसके ऊपर बैठ कर वो नमाज करते थे। अब वो उठ के आया, माता ने कहा भाई खोल दे आंखें, उसने आंखें खोल दी। उठकर अपनी मां के पास आया, माता आप तो बहुत झूठी हो, अब आज के बाद कराना मेरे से नमाज, मुझे बहका कर वहां बैठा दिया। अल्लाह ने मुझे खजूर तो दिया ही नहीं। उसकी माता बोली, बेटा भगवान ऐसे सरेआम नहीं देता, वो छुप के गुप्त रूप से देता है। देख ले तेरे कपड़े के नीचे कहीं रख गए होंगे, अल्लाह जरूर रखे होंगे। उसने जाते चादर फेंकी, उसमें खजूर पाए दो पत्तियां के बीच में अच्छे इतने सारे। वो तो खावा खजूर और कूद, खावा खजूर और कूद, अल्लाह ने मुझे खजूर दे दिया, अल्लाह ने मुझे खजूर दे दिया। अब वो खा पी लिया, थोड़ी देर पाछे बोला, माँ अब कब करनी है नमाज? वो बोली, डट जा थोड़ी देर फिर बताऊंगी। तो उसको ऐसा चाव चढ़ गया, वो बैठा दे उसने, वो अपना एक दो नमाज के कुछ जो मंत्र से थे वह बता दिए, और फिर वो अपना लग्या रहता, वो अपना काम ले करने लग जाती, और उलाने तो पीछा छूट गया। एक दिन वो माई, उसकी माता जी खजूर रखना भूल गई, और उसने कह दिया कि आजा भाई उठ ले। अब वो तो बाट देखा था, माँ कब कब उठ ले, वो फट दे उठ गए, और देखे उठा कर अपना खजूर खाता हुआ चल रहा, माँ के ध्यान को नहीं रहा रखना। वो खजूर खाता हुआ आया, और फिर उसके ध्यान आ गई, तेरे मैंने तो यू कह दिया उठ ले, खजूर रखना भूल गई। वो खजूर जो उसने तैयार कर रखे थे रखने के लिए, वो माँ के पास रखे, वो खजूर खाता हुआ रहा है। उसकी माता जी बोली, अरे शेख फरीद ये खजूर कहां से लाया? के माँ रोज देता अल्लाह मुझे, खावर कुदन का रोज देता अल्लाह मुझे, रोज देता। उसके समस्या हो रही माता जी के, खजूर तो मैंने रखे को नहीं, और ये खा कहां से रहा है? बेटा सच्ची बता, पकड़ा उसको, अब बेटा सच्ची बता कर, अग आजा दिखाऊंगा, देख यहां रखे थे। एक खजूर वहां गिर भी गया था जल्दी में उसके पास चादर के नीचे, और वो खा रहा सामने। अब माई तो कलेजा पकड़ कर बैठ गई, क्यों बालक को ना, इसके साथ तो अल्लाह विशेष रजा बख्श रहा है। और माई ने ये सोची थी कि आज इसको खजूर ना मिले तो ये कद्दे नहीं करे फिर, ऐसा निकम्मा है। कहने का भाव ये है कि परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं के पहले से साथ रहता है। अपनी आत्माओं ऐसे ऐसे सुख भी उसको हो रहे थे, तो फिर क्या हुआ, उसकी प्रेरणा परमात्मा में इतनी बढ़ती चली गई कि वो घर त्याग गए और घर से निकल गया अल्लाह के प्राप्ति के लिए। परमात्मा प्राप्ति के लिए घर से निकल गए, तो आ गए वो ऐसे ऐसे नकली संत काल के प्रेरित, वो मिल गए। एक संत मिल गया तपस्वी, उसका आसपास बहुत बोलबाला था कि ऐसे महात्मा कदे देखे ना सुने, बड़े सिद्ध पुरुष है, वचन में शक्ति है, कई वर्षों तक खड़ा होकर के तप किया है, कहीं बैठकर तप किया है, बहुत अच्छे पुराने संत है। अब उनकी दंत कथा सुनकर शेख फरीद भी उसी का शिष्य हो गया, घर त्याग दिया, बैराग ले लिया, कति शादी भी नहीं करवाई। शेख फरीद जी का जो गुरु था वो तपस्वी था, एक डेरा बना रखा था, उसमें 5-7 उनके शिष्य थे, परमानेंट रहते थे। अब कहते हैं परमात्मा पाने के लिए जो घर छोड़कर भी आ गया, और ये मान लिया कि इस गुरुजी से ही हमारा कल्याण होगा, तो उस गुरुजी को प्रसन्न रखना एक परम कर्तव्य बनता है शिष्य का। परमात्मा भी कहते हैं कि कबीर हरी जय रूठ जा और गुरु की शरण में जावे, और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं करे सहाय। तो जिनको परमात्मा चाहिए उन्होंने तो वो सारे ही क्रिया करनी होती है जिनसे भगवान मिले। तो उस शेख फरीद के नतीजे पक्का ठान रखा था कि अभी हमने भगवान चाहिए, और गुरुजी की सेवा भी करना अति अनिवार्य है, तो गुरुजी की सेवा में भी वो तत्पर रहता था। कहने का भाव ये है कि वहां रहने वाले अन्य शिष्यों से वो शेख फरीद जी गुरुजी की अत्यधिक गुड बुक्स में था, तो इस तरह वो हर स्टेप पर उस गुड बुक्स वाले यानी शेख फरीद जी को अधिक महत्व देते थे। प्रत्येक कार्य में कोई विशेष जिम्मेवारी का काम होता था उसको बताते थे, तो अन्य चेले जो वहां रहते थे वो ईर्षा करन लाग गए शेख फरीद कि भाई इसने तो गुरु जी को घना कंट्रोल कर लिया, इसकी सारी बात मानते हैं, और क्यों ना इसको गुरु जी के नजरों से गिरा दें एक दिन। तो क्या था वो गुरुजी कैसा था, खाना खाता था, खाना खा करके फिर हुक्का पिया करता था। तो उधर से गुरुजी ने क्या देखा, उन बच्चों की खेचादानी देखकर उसने ड्यूटी ला दी कि एक दिन एक शिष्य सारी क्रिया मेरी करवाएगा, मेरी सेवा करेगा, जैसे कपड़े धोने हैं, नवाना है, रोटी बनाना है, खिलाना है, हुक्का भरना है, तो ऐसे सबकी ड्यूटी लगी हुई थी। एक दिन शेख फरीद का जब समय आया तो उन वर्षा के दिन थे, चौमासा होता है ना आजकल मौसम, वर्षा ऋतु थी, वर्षा कभी हो जाती कभी रुक जावती थी। तो उन्होंने के स्कीम बनाई, जो अन्य शिष्य थे जो ईर्षा रखते थे शेख फरीद से, उन्होंने सोचा कि गुरु जी खाना खाते ही हुक्का पीते हैं, और उसमें इतना गुस्सा था उस तपस्वी संत में, खाना खाते ही आवाज लगाता था कि भाई हुक्का भर लिया हो, अच्छा जी हुक्का भरने चले जाते हैं। और 5 मिनट तक तो वो नहीं बोलता था, 5 मिनट के बाद आवाज दूसरी देता था, अरे हुक्का नहीं लाए बरकर, जब उस दूसरी आवाज में आ गया तो ठीक से, नहीं तो तीसरी आवाज भी लानी पड़गी, आते पहले तो बैंत मारा करता उसके हुक्के में, जब चलम रख देता चेला तो पहले उसका बैंत मारा करता, और 10-15 दिन तक उसको सेवा से बर्खास्त कर देता था, इतना रुष्ट हो जाता था, नाराज हो जाता था उससे। अब उन्होंने क्या योजना बनाई कि क्या करते थे वो खाना खिलाने वाले, उधर से खाना खिलाने जाते उससे पहले हुक्का भरने के लिए अग्नि तैयार कर देते थे, उसमें लकड़ लुकड़ लगा के तैयार कर देते थे, चूल्हे में कम होती तो और तैयारी कर देते थे, जला जलू कर वो पूरी तैयारी करके जाते थे कि रोटी खाते हुक्का पियोगे गुरु जी। तो शेख फरीद बा अपना तैयारी पूरी थी, आग पूरी थी उसको पता था, और खाना खिलाने चले गए। पीछे से उनके दूसरे साथियों ने उस पर पानी के छिट्टे मार दिए, वह आग बुझा दी, ऐसे ढंग से बुझा दी जैसे वर्षा ऋतु के कारण ये अपने आप बंद होगी। अब शेख फरीद ने खाना खिलाकर अपनी मस्ती से आया, तो अग्नि तैयार है, जाऊंगा भर लाऊंगा। उसने जाकर देखा अग्नि का एक पतंगा भी कोनी, और सिरगा लू ठीक कर लू। उसने सोचा भाई आज तेरी बात बिगड़गी और गुरु जी तेरे से नाराज होंगे, समय पर जब हुक्का नहीं भरा गया था और तेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, जय गुरु जी रुष्ट हो गए कि फूकूंगा इस जीवन का, क्या करूंगा इस मानव शरीर का। उसने इधर उधर देखा, कोई विकल्प नहीं देखा, देखा कि गांव से वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर गांव था, एक जहां उनका डेरा था गांव से 1 किलोमीटर लगभग दूर था। उसने देखा कि वहां एक धुआं सा उठ रहा किसी घर में बाहर की तरफ। अब शेख फरीद हाथ में वो चलम ले रखी, चिमटा साथ में, और बहुत स्पीड से दौड़ दिया कि गुरु जी आवाज लगाओ, इतने लेकर वापस आ जाओ। वो गया घर में, घुसा के माई, माई की बेटी अग्नि दे दे थोड़ी सी, हमारे मैंने हुक्का भरना है। अब वह माई कह रही थी जैसे गिल्ला ईंधन था, वह अग्नि लगावे फू फू कर फिर बुझ जा, आंखें धुआं पड़ रहा, वह दुखी सी हो रही, लाल आंख हो रही। उसने गुस्से में आकर कहने लगी अग्नि लेनी है तो आंख फुड़वा ले, आग लेनी है तो आंख फुड़वा ले, जब मिल लगी अग्नि न। बोला माई कौन सी आंख फुड़वाऊ, अब कोई सी फोड़ ले। उसने क्या किया, चमटा देख अपनी आंख में और वह आंख काट के ने बोला देख माई ले, आग दे दे जल्दी सी। अब माई ने देखा वो आंख में तो खून पड़ा और वो आंख काट के दर्दी कापन पे डकन पे वह डिगी। अब किसके गुरु जी तो बहुत सिद्ध पुरुष है, और उसने पता लग गया ना तेरे को शराब देगा। ने बोला ले जा महाराज, वो सारी चूल्हे तो अग्नि बाहर निकाल दी, धर ले जल्दी सी। अब उसने क्या किया कि कपड़ा सा बांध लिया अपनी एक आंख के ऊपर के डुंसी निकाल ली थी शेख फरीद ने, और धर के आग चलम पर डांक ठोक दी, फिर पूरी स्पीड तो बाज लिया। अब गुरुजी ने एक आवाज लगाई थी, रे शेख फरीद हुक्का ल्या भाई, तब वो शेख फरीद वापस आ रहा था, काफी दूर था, उसने सुनी को जा। अब गुरुजी ने दूसरी आवाज लगाई, रे कित मर गया शेख तू? ने बोला आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। इन कत्ते वो पहुंच गया टाइम पे, उक्का चलन धरती अका अच्छा भैया राख के लाग गया, अका आपकी रजा है दाता, दुमा दामा लाग गया। अब गुरुजी ने कोनी में तो दिया हो तब बाट देखा था, उक्का पिंद में सो जाया करता अपना, उसने पी का उक्का होता सो गया, रात्रि होगी। अब उस माई ने सारी रात नींद नहीं आई, अकी तो बात बिगड़ गई है, रात न जाऊं क्यों करे, सुबह उठते जाऊंगी। उस आंख को लिए रख रखी उस आंख, उसमें एक ढक्कन के ऊपर बर्तन का ढक्कन होता था जैसे कापन बोलिया कृष्ण, उस आंख ने लेकर सुबह सुबह वह माई डेरे में पहुंच गई। अरने बोली महाराज जी मैंने माफ कर दो, मेरे से गलती होगी, मैंने माफ कर दो। महाराज बोला भाई के गलती होगी बेटी, अगजी आपका बच्चा अग्नि लेन गया था हुक्का भरने के लिए, और मैं दुखी हो रही थी, आग जड़ा नहीं थी, कभी बुझ जाती थी तो गिल्ला ईंधन था, मैं दुखी हो रही थी, मैंने गुस्से में आकर ने कह दिया तू आंख फुड़वा ले, जब मैं लगी तेना आगे, और वो गढ़ा पीछा पड़ गया, माई आग जरूर दे दे, माई आग दे दे, मैंने उसको कह दिया तू आंख फुड़वा ले, मैंने आंख फुड़वा का धुम्मे में आंख फूट गई मेरी जब अग्नि बड़ी है, मैं दुखी हो रही थी, दुख में ये शब्द कह दिए आपके चेले ने और आंख निकाल दी चिमटा मार के, ए महाराज जी और ये मैं आंख ये देख लो ये ले आई हूं। अब वो गुरु जी ने सोचा रहा कि यू की कहानी है भाई, उन आवाज दी रहा शेख फरीद को बुलाओ, शेख फरीद आ गया, हाँ गुरु जी बेटा क्या बात थी, अग जी गिल्ला ईंधन था और ये आग बुझ गई यहां की, और आप रुष्ट हो गए तो मेरे जीवन का बनेगा कि मैंने तो मेरा तो उद्देश्य यही है कि मुझे भगवान मिला है, और आप रुष्ट हो गए मेरे ते तो मैं इस शरीर का क्या करूंगा। सीने से लगा लिया उस प्यारी आत्मा को उस संत ने अपने चेले को, और कहा बेटा खोल दे इस कपड़े ने, वो कपड़ा खोल दिया तो आंख पूरी होगी उसकी लेकिन थोड़ी छोटी होगी, आंख नो की नो होगी। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब विचार देखना कि जीव कैसे बचे इस काल के जालते हैं। उस प्यारी आत्मा संत ने उस गुरु जी ने, गुरु पद पे घर त्याग कौन करता है जो पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी होता है, परमात्मा की चाह में घर से निकलता है, या घर पे रहते हुए साधना जो करता है, इधर भ्रमता भटकता है, परमात्मा के चाहने के लिए तीर्थों पर मंदिरों में कहीं जाता है, वो पुण्यात्मा पुण्यात्मा ही होता है, पिछले संस्कार उसके अच्छे होते हैं, तो वही गुरु पद प्राप्त करता है। और फिर आगे हठ योग तो कुछ ऐसे जंतर मंत्र हैं सद ग्रंथों के, उनके करने से उसमें कुछ सिद्धियां आ जाती हैं, और उन सिद्धियों से उसके पुण्य जाते हैं। अब उसने अपनी उस वतन से उसको आंख दे दी, अब वो भक्ति सत नहीं थी गुरु जी की, शेख प्रीत जी के उस गुरु जी की, तो अगले जन्म में उसकी आंख स्वयं खत्म होगी, क्योंकि उसने अपने एक मनुष्य जीवन की आंख का दान कर दिया, एक आंख तो वो काणा होगा किसी न किसी जन्म में। तो ऐसे जालिम काम है इस काल का। अब वो गुरुजी जब मृत्यु को प्राप्त होने लगा, सबको निर्देश दिया करता बेटा ये साधना अंतिम सांस तक करना, घोर तपस्या करना, घोर तप करने से तुम्हें परमात्मा प्राप्ति होगी। जैसा उसके पास साधन था वो अपने चेलों में दृढ़ कर रखा। अब शिष्यों ने भी ये फाइनल मान लिया था कि हमारे गुरुजी ऐसे सिद्ध पुरुष से आंख भी ठीक कर सकते हैं, तो फिर इनकी सब बातों में दम है, सत्य है, सच्चाई है। तो इस दृष्टिकोण से सारे सतब्द थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। तो जब वह मृत्यु को प्राप्त हो गए, शरीर छोड़ गए, अब शेख फरीद जी ने सोचा कि यहां ये लोग खेचा ताणी रखेंगे मेरे साथ, गुरु जी चले गए हैं, और तपस्या करने के लिए उन्होंने कहा है हम थोड़ी दूरी पर उस आश्रम से 5-7 किलोमीटर जाकर वो तप करने लगे। अब 12 वर्ष तक उस शेख फरीद जी ने केवल 50 शेर अन्न खाया, 50 किलो 12 वर्ष में, हिसाब ला के देखो, ओए होए 50 किलो तो एक आदमी एक साल में छक्के भी कोई ना 50 किलो में सारे साल में, यानी सवा मन अन्न फरीद ने खाया। किस लिए खाया कि मैं मेरा शरीर जीवित रहा रहे थोड़ा बहुत और मैं इतना घोर तप करूं। अब उसने खूब तपस्या की। अब उसका शरीर इतना कमजोर हो गया, वो क्या करने लग गया, कुएं के साथ में एक वृक्ष था कूप के साथ, उस वृक्ष की टहनी कुएं के ऊपर के गई हुई थी ऐसे, उसने उस वृक्ष की टहनी में रस्सा बांध के अपने पैरों का बांध लेता और अन्न इसलिए कम खाता था कि मेरी इंद्रियां मेरे विकार बकवाद ना कर दे, कहीं मेरे इस मार्ग में बाधा ना कर दे, इसलिए अन्न कम जो ऐसा खाया करता कि बस ये सांस सांस आ जा और मन बकवाद ना करे, कोई मेरी क्रिया में भंग ना हो जा, कोई विकार ना कर बैठू मैं। तो उसने क्या किया, शेख फरीद ने ना सोचा, थोड़ा इसलिए आहार कम करता था तो उल्टा लटक जाता था कुएं में, पैर बांध गए रस्से तक और रस्से को थोड़ा लंबा लटका लेता था अपने हाथों तक पैरों के बांध के, फिर उस रस्से को पकड़कर धीरे धीरे ऊपर और उल्टा होकर के फिर लटक के ऊपर आ जाता था। ऐसे 12 वर्ष तक कुएं में उल्टा लटक के साधना की। अब एक दिन वो बाहर बैठा था, जिसा भी अन्न उसने खाना था वो खा लिया और ऐसे निढाल बैठ गया और वो सोच रहा था कि भगवान परमात्मा कब दर्शन दोगे, अल्लाह ये खुदा शरीर तो अंत होने वाला है, इतना वीक हो गए वो कि शरीर पर केवल अस्थि पंजर हाड़ हाड़ दिखाई दे थे, जैसे कति कमजोर आदमी होया करे। अब शेख फरीद जी ने ऐसे विचार कर रहा था, लेटा हुआ था, ऊपर से काग आगे कौवे, उन्होंने देखा ये आदमी मरा पड़ा है और इसके मांस तो है नहीं, हम खा लें, आंखें निकालने के लिए काग आगे माथे पर बैठ गए। तो उसने सोचा ये कौवे खाओगे तेरी आंख काट देंगे, वो कुएं में उल्टा लटक गया सहज सहज। तो कौवे वहां भी पहुंच गए तो थोड़ी देर के बाद उन्हें देखे तो बिल्कुल कंडमसा हो रहा है, तो फिर उस पर जा बैठे उस रस्से पे। तो वो क्या बोला कि भाई कौवे मेरी आंख छोड़ दियो, मेरे शरीर पर कई मास से सो तुम अपना पेट भर लो खा लो तुम, और न्यू कह के वो फूट फूट कर रोने लग गया। जब वो रोने लगा तो कौवे भी उड़ गए, अकी आदमी तो जीव है। शेख फरीद जी ये सोच रहे हैं कि ये भगवान परमात्मा प्राप्ति के लिए घर छोड़ कर आया था, परमात्मा अल्लाह मिला नहीं और शरीर अंत होने को आ चुका है, अब ये ज्यादा समय नहीं रह पाओगा। इससे वो बहुत बुरी तरह रोन लग गया, हे परमात्मा दया करो इस दास पे, दर्शन दो मुझ पापी को, ऐसे अधीन भाव से वो बहुत रोने लग गया। उसी समय परमात्मा पहुंच गए, क्योंकि सभी आत्माएं उस अल्लाह अकबर की हैं, अल्लाह कबीर जी की हैं, जो बनारस में दुल्हे का रूप धारण करके 120 वर्ष तक लीला करके गया, ये सभी आत्माएं उसी की हैं। वही अपनी आत्माओं के लिए भटक रहा है, काल ने हमारे साथ बहुत धोखा और जुल्म किया हुआ है, नरे नरे मजहब बना दिए और प्रत्येक को भ्रमित कर दिया, सच्चा ज्ञान छुपा दिया। अब परमात्मा आए कुएं पर खड़े हुए, रस्सा पकड़कर उसको बाहर निकालने लगे, ऐसे जैसे पानी निकालते, बहुत गहरे होते थे कुएं, उसमें 200 300 300 400 400 फुट गहरे होते थे नीचे। को क्या करते थे, जैसे खेतों में पाली होते थे गवाले, ये पाली होते थे बकरी भेड़ चराने वाले, तो कुछ एक शरारती होया करते, वो पकड़ कर उसका रस्सा और ऐसे घुमा देते थे, अलहा देते थे, एक बाबा जी फूटे जा गए इधर उधर कुएं में लायक गए, तो वो बेचारा अपना हाथ ऐसे कर लेता था, अपना सिर बचा लेता था, वो थोड़ी बहुत देर छोड़ छाड़ कर चले जाते थे, कर लेते शरारत अपनी। तो शेख फरीद जी ने सोचा कि आज तो कोई गणा शरारती आ गया और इसने मुझे बाहर ही निकाल लिया, पहले तो रस्से को लाकर भाग जाते थे, थोड़ी देर इधर उधर हिलकर में सेट हो जाता था, तो जो ही परमात्मा ने ऐसे बाहर निकाला, उल्टा लटका लटका कहता शेख फरीद के भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मुझे वापस छोड़ दे, शरारत ना करे, साधु संतों के साथ शरारत नहीं करते, भगवान अल्लाह तुझे सजा दे देगा। तो परमात्मा ने पूछा आप क्या कर रहे हो महात्मा जी, वो कहने लगे कि मैं परमात्मा प्राप्ति के लिए भगवान के दर्शनार्थ साधना कर रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं, भगवान की भक्ति करके उसकी प्राप्ति करूंगा, उसको दर्शन करूंगा, मालिक के दीदार करूंगा। तो परमात्मा बोले कि मैं हूं भगवान और मैं तेरे पास आ गया हूं। अब ये जो अज्ञान थ्योरी है, ये हमारा ज्ञान अज्ञान जो है, ये फिर आगे अड़ जाता है, ढीठ बना दिए इसने हम उस अधूरे ज्ञान में। अब शेख फरीद ने क्या सुन रखा है मुसलमान धर्म के सभी संतों से कि परमात्मा निराकार है, बेचून है, वो दिखाई थोड़े देता है, वो कभी किसी ने उसके दर्शन नहीं होते। शेख फरीद जी ये शब्द बोला, परमात्मा बोले भले पुरुष, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मैं परमात्मा के दीदार के लिए दर्शन करने के लिए साधना कर रहा हूं, और दूसरी तरफ आपका सिद्धांत क्या है, आप बता क्या रहे हो और कर क्या रहे हो। आप कह रहे हो भगवान निराकार है, वो दिखाई थोड़े देता है, और उसके पाने के लिए आप ये इतने डले ढोरा, इतनी साधना कठिन कर रहा है। न्यो तो सोच ले भले पुरुष, तुम कह क्या रहे हो और कर क्या रहे हो। ओ तेरा गजब भैयो, इतनी सी बात थी, अब शेख फरीद के मन के सारे सक्रियों सीधे हो गए, वो सारे लेंस सीधे हो गए कि जो उल्टी आंट पकड़े बैठा था उसने न्यो के न्यो चरण पकड़ दिए उल्टे लटके लटके। ये सोच लिया कि ये अल्लाह नहीं है तो अल्लाह का जानकार अवश्य है। भाई सच्ची बात है कि हम परमात्मा के दर्शन के लिए सारा प्रयत्न कर रहे हैं और परमात्मा को निराकार बता रहे हैं, दर्शन किए कराएंगे, डले डोन लग रहा। तब परमात्मा कबीर जी ने कहा बच्चा भगवान मिलेगा उसके विधिवत, एक विशेष विधि है, और ऐसे भूखा मरने से, हठ योग करने से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। तो पहले कुछ फल खा, आहार कर, थोड़ा खा ले, तंत बिल्कुल छोड़ दिया, सवामन अन्न 12 वर्ष में क्या मायने रखता है। अब आहार कर और जैसे मैं बताऊं ऐसे भक्ति कर। तब उसने परमात्मा कबीर जी ने उनको उपदेश दिया, उस प्यारी आत्मा ने सच्चे दिल से उसकी श्रद्धा से मालिक की भक्ति की। तो फिर परमात्मा ने कबीर जी ने उसको कुरान शरीफ में बताया कि ऐसे ऐसे उसमें लिखा है कि वो परमात्मा, कुरान शरीफ सूरत फुरकानी आयत नंबर 52 से 59 में, आपका कुरान शरीफ ज्ञानदाता किसी अन्य अपने से और सुपीरियर सर्वशक्तिमान सर्वसृष्टि रचनहार परमात्मा अल्लाह के बारे में बता रहा है, और उसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर वो तुम्हारा अल्लाह नहीं जानता जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है, उसके लिए उसने ऑप्शन छोड़ दिया, कोई बाखबर यानी तत्वदर्शी संत बताएगा उससे पूछो, वो तत्वदर्शी संत मैं हूं। तो ये तो जचगी सक शेख फरीद कह के सचमुच, क्योंकि वो पढ़ा करते थे उनको, तो उसी समय नाम ले लिया, सब क्रियाएं जैसे परमात्मा ने बताई वैसे करने लगे, फिर उनको मोक्ष अधिकारी बनाया परमात्मा ने। तो कहने का भाव ये है, गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जिहान, सीता सी बहु भारिया संत दूर अस्थान। संत के घर दूर हैं, संत का घर दूर है, और देखो शेख फरीद जी का पहले वाला गुरु कितना सिद्धियुक्त था, आंख भी ठीक कर दी। तो ऐसा चमत्कार देख के कौन हिल जाए, उस गुरु जी दोहरे थे न सोचे तो भगवान उतर रहा है, और वो था काल का दूत, काल से सिद्धियां साधना करके, हठ योग करके बैटरी चार्ज कर ली और वहां उसको बांट बूट के अपना नाश कर लिया, अनुयायियों को भी भ्रमित कर गया। अपने आत्माओं आप कितनी पुण्यात्मा हो, उस एक एक प्यारी आत्मा को सच्चा मार्ग पर लाने के लिए परमात्मा ने किस किस प्रकार खड़े करने पड़े। उन्होंने सारे डले डोलिए जो परमात्मा उनके पास गए, उनको वही रास्ता बता जो आज दास आपको बता रहा है। आप कितनी पुण्यात्मा हो कि उनसे, उन संतों से भी आप अधिक पुण्यात्मा हो जो आपको आज सहज में भगवान मिल रहा है। आगे फिर क्या बताते हैं, सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा, सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा, कदे पालकिया में चाल तेरे आज उठा लिया गोदड़ बारा, कदे पालकियों में चाल तेरे आज ठा लिया गोदड़ बारा, सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा, सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा, शोर मचा रणवास में, शोर मचा रणवास में, ना देख्या पीछा फिर के, ना देख्या पीछा फिर के, ना देख्या रे पीछा फिर के, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। अब सुल्तान अधम की कथा आपको फिर सुनाएंगे। इब्राहिम सुल्तान अधम ये एक बहुत बड़ा रईस राजा था, 18 करोड़ तक घोड़े थे, और इस अर्धव ये पुदकर्मी प्राणी जितना होता है उसको संसारिक सुख भी गणा होता है। जब इस प्राणी को सुख गणा हो जाता है, जैसे बकवाद गणी बाया करें, उसके 16,000 रानियां थी। ओ तुरागुदुगुए, आपने देखा होगा राजा लोग पहले पुराने ये बहुत बकवाद करा करते थे, क्योंकि कोई टोकनिया टोकनिया था को ना, सारी बकवाद जितनी ना हुआ करती ये करा करते। और जब उसको ज्ञान हुआ, ओए होए, जब उसको ज्ञान हुआ कि रे तू तो फंस गया नरक में, परमात्मा पहुंचे उसके पास, उसको ज्ञान दिया, तो क्या बताते हैं, 18 लाख तुरा जिन छोड़ी पद्मनी 16 सन से, एक पलक में त्याग गए ये सतगुरु के हंस। 18 लाख तुरा माने घोड़े, 18 लाख तुरा जिन छोड़े और पद्मनी 16 सन से 16,000 रानी त्याग दी, और एक पलक में त्याग गए, यानी पाछे फिर कह नहीं देखा, सारी रोवे थी औरतें, बोला ना देखा पाछा फिर कह, कहते एक पलक में त्याग गए सो सतगुरु के हंस। अब जब वो घर त्याग के सुल्तान अधम जावे था, बहुत बड़ा रईस राजा था, अब उसने क्या किया, कंबल लपेट रखा था, मुंह काला कर रखा था, कोई पहचान ना ले, कालस ला रखी थी। वर्षा होने लगी, एक झोपड़ी में एक व्यक्ति, एक झोपड़ी में पति पत्नी वहां रह रहे थे, और एक झोपड़ी और थी उसमें एक गऊ बांध रखी थी, और वर्षा अच्छी होगी तो दोनों जने रात्रि में बतला रहे हैं, उसका पति कह रहा अपनी पत्नी को कि ओहो अब कितनी अच्छी वर्षा होगी है, और इतना बढ़िया घास हो गया है, अपनी गाय खूब बढ़िया छक्या करेगी और मौज ते दूध पिया करेंगे, ठाठ हो गया अपने, फसल भी बढ़िया होगी। कहने लगे अपने ते इसे ठाठ हो गए, इसे बलख बुखारे के बादशाह के भी को जा। अब देखो, अब वो बलख बुखारे का बादशाह सुल्तान अधम इतना वेल नोन हो रहा था कि उस जैसा सुख किसी का नहीं, वो उदाहरण बन गया था। तो शाम ने तो बोलिया को नहीं, इब्राहिम सुल्तान अधम सुबह उठकर उनके सामने गया, नमस्कार किया, उन्होंने पूछा भी कौन है, कहां से आया है तू, तो वो कहने लगा भी मेरी एक बात का उत्तर दो तुम पहले, मैं पाछे बताऊंगा कौन हूं मैं क्या। कि आप रात्रि में एक बात कह रही थी कि तुम ये कह रहे थे कि हमारे बढ़िया वर्षा होगी और इसे ठाठ हो गए बल्ख बुखारे के बाद से कभी को जाए। भाई आपके के ठाठ हो गए कि ठाठ तन दिखते को ना, ये हमारी गऊ है गाय बांध रखी दूसरी झोपड़ी में एक गाय है और उनका संतान भी नहीं थी निसंतान थे और अच्छी बढ़िया फसल होगी अपना पीवांगे दूध बढ़िया फसल होगी खूब ठाठ चरा करेंगे हमारे होगी ठाठ। तो वो राजा बोला कि मैं बल्ख बुखारे का बादशाह हूं भाई, पूरा ज्ञान समझाया। पहले तो ज्ञान समझाया साधु संत सा दिखा था काले कपड़े नो एक कंबल सा बांध रखा जैसे एक चादर बांध लिया कर, काफी ज्ञान समझा भाई भक्ति करनी चाहिए परमात्मा का नाम लिया करो, ये तो कुछ दिन का खेल है या कोई नहीं रहा, एक दिन मृत्यु हो जाएगी सब कुछ ही रह जाएगा। तो वो कहने लगे अपना काम कर हमने गणा शिक्षा की जरूरत को ना अडम। कहने लगा मैं बल्ख बुखारे का बादशाह था, वो सुल्तान अधम कहने लगा कि मैं बल्ख बुखारे का राजा हूं और मैंने पता लग गया भाई भक्ति बिना गुजारा नहीं, ये तो झूठा जाल है सारा, और आजा तेरे को भी गुरुजी से नाम दिला दूंगा मैं। अब वो व्यक्ति बोला ने बोला वह पहली तो मेरे बात यह जचती नहीं कि तू बल्ख बुखारे का बादशाह होगा सह, और जय तू बल्ख बुखारे का बादशाह हर तेने राज छोड़ दिया तो तेरे कैसा बोली बूझनी तेरे जैसा मूर्ख नहीं से ठाठने छोड़ का, अगर मुझे के शिक्षा दे तो अपना काम कर चल। अब जबकि वो उन राजा दिखा था तब अब्राहिम सुल्तान ने क्या कहा वहां पे, एक रंडी ढंडी दांत जाए एक औरत को और ढंडी कहे गाय को, एक रंडी ढंडी नात जाए ये नर कहिए काग, और भाई बल्ख बुखारा त्याग दिया थी कोई पछली लागे। ये तो एक गानी छूटती एक औरत में ठाठ मान रहा है और हमने बल्ख बुखारे के ठाठ छोड़ दिए, ये हमारे कोई पिछले संस्कार थे, परमात्मा की हम पर रजा होगी और ये कूतरू इससे मुड़ जा पड़ा है। तो पुण्यात्माओं जब आपकी ये स्थिति आ जाएगी जिस धन को आप मांगने आते हो और परमात्मा उस नरक से आपको निकाल कर परमात्मा की तरफ लगाता है, अब पुण्यात्माओं परमात्मा दूर नहीं है जो उसके ऊपर समर्पण करके लगता है। बल्ख बुखारे बादशाह का जाकर जंगल में बैठ गया वो, जब घर छोड़कर शाम तक कुछ आहार मिला नहीं, सुबह रात भी होगी, सुबह सोचा ही अल्लाह आपका दास भूखा मरेगा। आकाश मार्ग परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब, ये वो परमात्मा हैं जिन्होंने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की, ये वो भगवान हैं जिनका कोई माता पिता नहीं है, ये वही परमात्मा हैं जो सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को अपने सतलोक स्थान से सनातन परम धाम से गति करके चलकर वहां से बनारस में काशी शहर में एक लहर तारा तालाब में विकसित कमल के फूल के ऊपर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। इनके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के महर्षि थे जो तत्कालीन महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति निसंतान थे, वो प्रतिदिन स्नानार्थ उस लहर तारा तालाब पर जाते थे, उसके अंदर गंगा दरिया का जल लहरों के द्वारा उछलकर वर्षा के दिनों में जब गंगा दरिया फुल स्विम पर चलती थी पटड़ी से ऊपर से उछलकर एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था। तो उसमें स्वच्छ जल होता था, वहां स्नान करने के लिए वो प्रतिदिन जाया करते थे। उस दिन परमात्मा उनको कमल के फूल पर विराजमान मिले, नीरू नीमा उनको अपने घर ले आए। नीरू नीमा एक दुल्हे थे, दुल्हे का कार्य करते थे। बड़े होकर परमात्मा भी मुंह बोले माता पिता के साथ दुल्हे का कार्य करने से दुल्हा कहलाए। पुण्यात्माओं, मानव समाज पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान से अपरिचित है, परमात्मा की परिभाषा से वो अपरिचित होने के कारण परमात्मा से मिलने वाले लाभ से वंचित है। जब किसी के ऊपर भी आपदा आ जाती है, चाहे वो राजा भी क्यों ना हो, सारी पृथ्वी का शासक भी क्यों ना हो, वो भी अंत में परमात्मा से ही लाभ की इच्छा करता है। आम व्यक्ति, आम नागरिक तो राजा से इच्छा करता है कि मुझे राजा कुछ लाभ दे, और राजा भी जब आपत्तियों से घिर जाता है परमात्मा से ही याचना करता है। एक समय की बात है कि एक राजा शिकार खेलने गया हुआ था और किसी कारण से रास्ता भूल जाने से वो अपने साथियों से वंचित हो गया, अपनी सेना से भी छूट गया। उसको बहुत भूख लगी, वो रास्ते में आ रहा था, एक किसान से उसकी मुलाकात हुई। किसान ने उसको अपने खेत में लगे मतीरे, तरबूज, खरबूज आदि खिलाए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया कि तू कभी भी मेरे पास आ जाना, मैं राजा हूं इस शहर का, तुझे कोई नहीं टोकेगा। कुछ दिनों के बाद उसको किसान ने सोची अपने मित्र से मिलकर आता हूं और कुछ उससे मांगूंगा, धन मांगूंगा। वो किसान जब वहां पहुंचा, पहरेदारों को उन्होंने राजा का दिया हुआ वो दिखा दिया पर्ची, किसी ने उसको नहीं टोका। जब वो अंदर गया तो उसने देखा एक व्यक्ति अपने महल के आंगन में और कपड़ा बिछा करके भगवान से ऐसे कोई याचना कर रहा है। तो वहां पहरेदारों ने बताया कि आप यहां खड़े हो जाओ, राजा अभी प्रेयर कर रहा है परमात्मा से, कुछ याचना कर रहा है, क्योंकि उसमें सूखा गिर गया था और सूखे से दुखी होकर ही वो किसान राजा के पास कुछ याचना करने गया था। तो किसान ने पूछा उनसे, अंगरक्षकों से, भी क्या कर रहा है राजा, के भगवान से याचना कर रहा है कि मेरे राज्य में कुछ सुख सुविधा हो, वर्षा हो जाए तो मेरी प्रजा सुखी हो और मुझे भी टैक्स मिलाए। किसान वापस चल पड़ा, कहने लगा मैं तो भिखारी के पास आ गया, ये आप ही भिखारी है, ये भगवान से मांग रहा, तो मैं भी उसी से मांगूंगा जिसे राजा मांग रहा है। तो पुण्यात्माओं, ये हम कथा सुना करते थे, ये कहानी भी सुनते थे, ये बात बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि परमात्मा सभी को देता है, राजा हो चाहे रंक, क्योंकि वह सभी उसी की आत्माएं हैं। और हम अज्ञानतावश इन राजाओं के पीछे ही पड़े रहते हैं, ये हमें सुख दे, ये हमें सुख दे, ये कुछ नहीं दे सकते। आपके जो किस्मत में भाग्य, उसको वही मिल सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपका उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। जो दे सकता है, जो आपके भाग्य में परिवर्तन कर सकता है, आपके दुखों का नाश कर सकता है, आपके किस्मत में ना हो वो धन भी वो दे सकता है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है। उस पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी आज तक हमें नहीं हो पाई। हम बोलते भी रहे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, याचना भी करते रहे, लेकिन उससे कुछ लाभ लेने का एक विशेष तरीका होता है। वो तरीका हमें ना मिलने से हम केवल परमात्मा की स्तुति ही करते रहे, उसके गुणगान करते रहे। और जिससे हमें उस परमात्मा से लाभ नहीं मिला, परमात्मा से लाभ ना मिलने के कारण फिर हमने अपनी इच्छाओं की पूर्ति अपने दृष्टिकोण से, अपनी सोच से रास्ता निकाल लिया। किसी ने चोरी करके, किसी ने डाके मार के सोचा मैं धनी बन जाऊंगा, किसी ने मिलावट करके, किसी ने 2 के 20 बनाने की इच्छा करके, किसी ने रिश्वत लेकर के सोचा मैं धनी बन जाऊंगा, 7 जन्म भी नहीं बन सकते इस तरह धनी। धनी बनने का तरीका सतगुरु संत बताते हैं और वो सतगुरु संत परमात्मा से कनेक्टेड होते हैं और उनके द्वारा बताई विधि से वो पूर्ण परमात्मा आपको आपके भाग्य से न्यारा देता है, आपके ऊपर आने वाली आपदाओं को भी वो दूर करता है। वो परमात्मा कौन है? अब यही डिसीजन करने में, यही निर्णय करने में इतना समय लगता है हमें कि एक एक महीना सत्संग करते रहते हैं, यानी महीने में 3 दिन, फिर 3 दिन, 6 दिन हम सत्संग करते हैं और 6 दिन में यही बताने की चेष्टा करते हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है। और अन्य जिनको हम परमात्मा मानते थे, भगवान मानते थे, वो कितने समर्थ थे, हम उनको मान क्या रहे थे। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अजरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालज्य सारी सृष्टि के रचनहार अजन्मा, इनके कोई माता पिता नहीं, ये लोक वेद सुन रखा था, ये दंत कथा सुन रखी थी और हम इन्हीं की पूजा में लगे हुए थे। अपुण्य आत्माओं, हमने ब्रह्मा विष्णु महेश जी के बारे में कहां से ज्ञान हुआ? पुराणों से। और इन पुराणों को पवित्र हिंदू समाज ऑथेंटिक ग्रंथ मानता है। आज उन्हीं ऑथेंटिक ग्रंथों में, आज उन्हीं प्रमाणित ग्रंथों में ब्रह्मा विष्णु महेश की सची थी। हमने जो ज्ञान सुना था उसके विपरीत हमें पढ़ने को मिली। अपुण्य आत्माओं, जिन्होंने हमें ये लोक वेद सुनाया वो ब्राह्मण थे, गुरु थे। ब्राह्मण कहो, गुरु कहो, आचार्य कहो, ऋषि कहो, महर्षि कहो, ये अध्यात्म मार्ग के जानकार माने जाते थे और ये संस्कृत भाषा जानते थे। संस्कृत भाषा जानने के कारण हमने इनको ये मान लिया था कि इन्होंने सदग्रंथों को पढ़ा है, समझा है और ये जो ज्ञान हमें बता रहे हैं ये ज्ञान सत्य है। तो क्योंकि हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, उनको संस्कृत भाषा नहीं आती थी, जिस कारण से वो ये निर्णय नहीं कर सके कि ये गुरुजी जो बता रहे हैं ये हमारे सदग्रंथों में लिखा है या नहीं लिखा। उन्होंने यही माना कि सदग्रंथों में ही लिखा है जो ये हमें बता रहे हैं। इसलिए उस पुराने समय से अशिक्षित समाज होने के कारण एक लोक वेद बन गया। लोक वेद का अर्थ है अक्षेत्रीय ज्ञान, दंत कथा, सुनी सुनाई बातें जो किसी सदग्रंथ में नहीं है और उसका प्रचलन बहुत ज्यादा हो जाता है। एक कहानी है कि जो एक झूठ को और 100 बार कह दिया जावे तो वो सत प्रतीत हो जाती है, सत लगने लग जाती है। तो ऐसे हमने हजारों वर्षों से यही लोकवेद सुना और एक दूसरे को सुनाते सुनते रहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, यही पूजा के योग्य हैं, इन्हीं की पूजा करनी चाहिए, दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। और किसी किसी की बुद्धि, लाखों करोड़ों में एक की बुद्धि जाती थी कि ब्रह्म साधना करनी चाहिए और पूजा नहीं करनी चाहिए। और ब्रह्म से ऊपर ज्ञान बताने वाले स्वयं परमात्मा ही आए थे, कबीर देव जी। और फिर उसके बाद जिन महापुरुषों को, जिन वर्णीय पुरुषों को, दृढ़ भक्तों को परमात्मा मिले, उनको अपने ज्ञान से, अपनी महिमा से परिचित करवाया, उन संतों ने भी वही ज्ञान बोला जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर के अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बोला था, और वही ज्ञान आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान मिला जो संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। कौन कौन से सदग्रंथ? पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, श्यामवेद और अथर्ववेद, पवित्र 18 पुराण और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता। इनमें वही ज्ञान आज हमें स्वयं पढ़ने को मिला क्योंकि हम शिक्षित हो गए जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी अपनी अमृतवाणी में बोला करते थे, सुनाया करते थे, जो लिपिबद्ध किया हुआ है। परमात्मा क्या कहा करते थे? तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनू तापम। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोर बंधे सब आवे। कोटिक करता फिरता देख्या, हर हट डोर कहूं सुन लेखा। अब परमात्मा क्या बताते थे? गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। गुण तीनों की भक्ति में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति में ये पूरा समाज, मानव समाज, हिंदू समाज भूला पड़ा है, और इनको यथार्थ मंत्र निज नाम का ज्ञान नहीं। उस निज नाम के बिना तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता। अपुण्यात्माओं, पूरा विश्व अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित है। अब इसका प्रमाण हम कहां से लें? क्योंकि हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करते थे, और ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी पूजाएं करते हैं, वो किसी अन्य और शक्ति की पूजा करते हैं, और देवताओं की और भगवान की पूजा करते हैं, तो ये स्वयं ही किसी की पूजा कर रहे हैं और हम इनकी पूजा करते हैं, तो वो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अपनी स्विच्छा से, अपने लोक वेद के आधार से जो साधनाएं करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है। अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। फिर गीताजी अध्याय नंबर 16 ही के श्लोक नंबर 24 में कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। यदि तूने परमात्मा चाहिए, मोक्ष चाहता है, तो सदग्रंथों में जो लिखा है और वही ज्ञान संत बता रहा है कोई, तो वो सच्चा संत है, वो तत्वदर्शी संत है। उन सदग्रंथों के अनुसार साधना को ही प्रमाण मानना। अपने आत्मा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में क्या बताया है कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, ये काल बोल रहा है। जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता कि अर्जुन, ये देख मेरा रूप, मैं काल हूं और अब परिवर्त हुआ हूं, और मैं सबको खाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ू। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 21 में अर्जुन आंखों देखा कह रहा है, भगवान आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो, सी और सिद्धों के टोड़ के टोड़, झुंड के झुंड आपसे मंगल कामना कर रहे हैं, आप इनको भी खा रहे हो। तब ये काल कहता, मैं तो काल हूं भाई, सब न खाऊंगा, मैं ना छोड़ू किसी को।